हिडन फाइल्स साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ ओनली ऑन रेड एफएम। रेड एफएम पर सुन रहे हैं आप हिडन फाइल्स। और साइबर क्राइम के इस दौर में आप ऑथेंटिसिटी की इच्छा ना रखें। आज का रियल लाइफ साइबर क्राइम केस सुनकर आपको ये समझ आ जाएगा। सुनिए आज की कहानी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे से।
अश्विन और श्रुति पति पत्नी हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं, पर दोनों में ही अक्सर छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। मैं जानता हूं कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, पर ये झगड़े कई बार काफी बढ़ जाते हैं। उस दिन भी किसी बात को लेकर अश्विन का श्रुति से झगड़ा हुआ और दोनों के बीच बातचीत बंद थी। अश्विन एक टीवी न्यूज चैनल में काम करते हैं। उस दिन वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही घर से निकल गए और उन्होंने मुझे कॉल करके बताया। अश्विन की बात सुनके मैंने उसे समझाना चाहा, पर शायद वो यही सोच रहा था कि मैं उसे नसीहत दे रहा हूं। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और ऑफिस के काम में लग गया। लंच टाइम होने का था और अश्विन को एक अननोन नंबर से कॉल आया। कॉलर ने कहा,
हेलो शुक्ला जी, मैं नितिन बोल रहा हूँ। एक न्यूज को लेकर मेरी व्यास जी से बात चल रही थी, फिर मुझे आपका ख्याल आया।
व्यास जी शुक्ला जी के कॉम्पिटिटिव चैनल में काम करते हैं। शुक्ला जी ने पूछा,
क्या न्यूज है?
नितिन ने कहा,
वीडियो है आलोक जी का, सेंसिटिव है।
आलोक जी एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनका नाम सुनते ही अश्विन की आंखों में चमक आ गई। अश्विन ने तुरंत कहा, भेजो मुझे। नितिन ने कहा,
नहीं सर, पहले रेट बताइए, मेरी बात व्यास जी से ऑलरेडी चल रही है।
अश्विन ने इरिटेट होते हुए कहा,
अरे यार कुछ बताओगे नहीं तो लूंगा कैसे?
नितिन ने कहा,
मैं कुछ वीडियोस के कुछ स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, यू'ल गेट इट।
अगले ही पल अश्विन को कुछ स्क्रीनशॉट्स आ गए थे। उसमें आलोक जी क्लियर दिख रहे थे और वो किसी महिला के साथ थे। अश्विन ने फिर पूछा, डीप फेक तो नहीं है? नितिन ने कहा,
क्या बात कर रहे हैं सर, मैं आपको डीप फेक वीडियो दूंगा, जल्दी बताइए नहीं तो मैं व्यास जी को फाइनल कर रहा हूँ।
अश्विन ने पूछा,
कितना चाहिए?
नितिन ने 10 लाख की डिमांड रखी। अश्विन ने झुंझलाते हुए कहा,
इतना कौन देता है यार?
नितिन ने कहा,
सर व्यास जी 8 लाख देने को तैयार हैं, कॉन्फिडेंशियल है, पर आप कहो तो मैं आपको उनका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, आप डिसाइड कर लो।
थोड़ी देर में नितिन ने अश्विन को एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें उसकी बात व्यास जी से हो रही थी। नंबर भी व्यास जी का ही था और उसमें व्यास जी 8 लाख देने को एग्री कर गए थे। अश्विन अब थोड़े प्रेशर में था। उसने अपने सीनियर से बात की और जैसे कि तय हुआ था 1 लाख रुपए एडवांस नितिन को भेज दिए। पर उसके बाद भी नितिन ने कोई वीडियो नहीं भेजा। अश्विन लगातार फॉलो कर रहे थे पर नितिन अब कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। अश्विन को लगा कि शायद नितिन ने व्यास जी के साथ डील कर ली है। जब काफी देर तक नितिन का जवाब नहीं आया तो अश्विन ने व्यास जी को फोन लगाया और कहा,
तो डील आपने कर ही ली?
व्यास जी अचानक अपने कंपटीशन टीवी न्यूज चैनल से फोन आने पर हैरान थे। उन्होंने पूछा,
कौन सी डील?
अश्विन ने कहा,
अरे वही आलोक जी वाले वीडियो की।
व्यास जी ने चौंकते हुए कहा,
अरे आप क्या बात कर रहे हैं?
अश्विन ने जब व्यास जी को सारी बात बताई तो व्यास जी मानने को तैयार ही नहीं थे। फाइनली अश्विन ने वो स्क्रीनशॉट व्यास जी को भेज दिया और व्यास जी ने जो कहा उसे सुनकर अश्विन जी शॉक्ड हो गए। व्यास जी ने कहा,
अरे ये मेरी चैट है ही नहीं।
अश्विन ने कहा,
मतलब ऐसा कोई वीडियो नहीं था?
व्यास जी भी शॉक्ड थे कि कोई उनकी फेक चैट सर्कुलेट कर रहा है। उन्होंने कहा,
भाई ये नितिन कौन है, मैं जानता ही नहीं।
अश्विन भी हैरान थे कि मीडिया में होने के बावजूद कोई कैसे उनको लूट के चला गया। अपनी बेवकूफी वो किसी को बता भी नहीं सकते थे। उन्होंने नितिन को दोबारा कॉल किया। नितिन के फोन पर रिंग जा रही थी पर अब नितिन फोन पिक ही नहीं कर रहा था। अश्विन ने अपने कलीग के फोन से नितिन का नंबर डायल किया पर नितिन ने वो फोन भी पिक नहीं किया। मतलब नितिन बेहद होशियार था और वो अननोन कॉल्स पिक ही नहीं कर रहा था। अश्विन जी ने अपने चैनल की इन्वेस्टिगेशन टीम से नितिन का पता लगाने को कहा पर बेसिक इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया कि ये नंबर नितिन के नाम पर है ही नहीं, पर नंबर दिल्ली का ही है। नंबर चांदनी चौक में किसी हरिओम के नाम पर था जब काफी एफर्ट्स के बाद भी नितिन उर्फ हरिओम पकड़ में नहीं आया तो अश्विन जी ने मुझे कॉल किया। नितिन ने उनके साथ फ्रॉड किया था और पैसे उन्होंने खुद ही ट्रांसफर किए थे, पर वो पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहते थे। शायद उनको लग रहा था कि लोग उनकी बेवकूफी पर हंसेंगे। मैंने सलाह दी कि आप पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, क्योंकि क्रिमिनल अगर शातिर है तो उस तक पहुंचकर भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। पुलिस कंप्लेंट के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो क्रिमिनल की लोकेशन दिल्ली NCR में ही थी। हालांकि सिम जिस हरिओम के नाम पर था वो तो बिहार का माइग्रेटेड मजदूर था और उसका इस सिम से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर ये कौन था जो हरिओम का सिम यूज कर लोगों को व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजकर ठग रहा था? इंस्पेक्टर बलजीत ने भी जब उसकी लोकेशन के बेस पर उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया और वो नितिन हमारी आंखों से अभी भी दूर था। पर यह तय था कि अश्विन को नितिन और व्यास जी की बातचीत का जो स्क्रीनशॉट भेजा गया वो फर्जी था। सो मैंने गूगल सर्च कर वो टूल्स ढूंढने की कोशिश की जिससे व्हाट्सएप स्नैपचैट के स्क्रीनशॉट क्रिएट किए जा सकते हैं और मुझे कई सारे टूल मिल गए, जिसमें एक था fakedetails.com, फेक व्हाट्सएप चैट जनरेटर। इनफैक्ट मुझे ऐसे टूल्स भी मिले जो UPI एप्स के भी स्क्रीनशॉट क्रिएट कर देते हैं। और फिर मुझे कई सारी न्यूज मिली जहां लोगों ने UPI पेमेंट के फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट क्रिएट कर लोगों को ठगा था। मतलब ये फर्जी स्क्रीनशॉट क्रिएशन एप्स काफी मिसयूज हो रहा था और इससे साइबर क्राइम बढ़ रहा था। उस दिन मेरे कुछ दोस्तों के साथ हमारा दिल्ली के एक क्लब में पार्टी करने का प्लान था। हम लोग अलग अलग क्लब के बारे में पता कर रहे थे और उनकी रेटिंग्स और बुकिंग प्रोसेस को ढूंढ रहे थे कि तभी किसी ने हमें एक पॉपुलर क्लब का आइडिया दिया। ये क्लब काफी महंगा था और हमने डिसाइड किया कि हम यहीं जाएंगे। बुकिंग का प्रोसेस काफी सिंपल था, पेमेंट का स्क्रीनशॉट उन्हें भेजना था और वो एक बुकिंग आईडी शेयर कर देते। ये प्रोसेस देख के मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने इंस्पेक्टर बलजीत से पूछा कि नितिन ने जिस नंबर से कॉल किया था ये कब से एक्टिव है। बलजीत ने मुझे बताया कि क्रिमिनल का ये नंबर काफी टाइम से एक्टिव है और अभी भी एक्टिव है, लेकिन इससे कोई भी पर्सनल कॉल नहीं हुई है। जाहिर सी बात है कि यह नंबर सिर्फ क्राइम करने में ही इस्तेमाल हो रहा था। मैंने कहा तो फिर इन्हें कुछ ऑफर करते हैं ना, और हमने उस क्लब की एंट्री का इनवाइट क्रिएट करके उन्हें भेज दिया। इनवाइट में हमने करीब 60% डिस्काउंट भी ऑफर किया था। हमें लग रहा था कि पता नहीं नितिन इस इनवाइट को सीरियसली लेगा भी या नहीं, पर शायद हैवी डिस्काउंट देख के उसको इंटरेस्ट आ गया और उसने हमारे उस नंबर पर कॉल किया। नितिन ने कहा,
Is this correct that you are offering 60% discount and unlimited food and unlimited drinks?
वो नंबर हमारी टीम से विशाल का था। विशाल ने फोन उठाया और कहा, Yes sir, that's right. आप discounted booking amount pay कर दीजिए। नितिन ने कहा, मैं 14 लोगों का booking amount pay कर रहा हूँ। और उसके बाद नितिन ने एक fake UPI payment screen create करके हमें भेज दिया। 56,000 transferred. हमने चेक किया तो वो फेक स्क्रीनशॉट ही था, पर फिर भी हमने एक बुकिंग नंबर नितिन को भेज दिया और रिस्पॉन्स किया कि उनकी बुकिंग कंफर्म हो गई है। पुलिस की एक टीम क्लब के रिसेप्शन पर तैयार थी और अब शाम को हमें इंतजार था इस गैंग का उस क्लब में पहुंचने का। अक्सर क्रिमिनल अपनी मोडस ऑपरेंडी पर कई बार ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। नितिन को लगा कि उसके फेक स्क्रीनशॉट ने तो यहां भी कमाल कर दिया और फिर रात 8 बजे ये 14 लोग उस क्लब में पहुंच गए। हमारे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार क्लब में उन्हें एंट्री दे दी गई और एक वेटर ने जाके उनसे ऑर्डर लिया। वो क्रिमिनल जो फ्री के खाने का इंतजार कर रहे थे अचानक से अपने आसपास पुलिस को देख के घबरा गए और पकड़े गए। दरअसल इन फेक स्क्रीनशॉट से कई लोगों की इग्नोरेंस का फायदा उठा के ठग रहे हैं। अभी हाल ही में कई सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं कि ऑनलाइन कैब टैक्सी सर्विसेज के ड्राइवर फर्जी बिल डिटेल्स क्रिएट कर लोगों से बिल्ड अमाउंट से ज्यादा का पैसा डिमांड करते हैं और वो ये दिखाने के लिए फर्जी स्क्रीनशॉट क्रिएट करते हैं। कई बार लोग जल्दी में होते हैं और बहस में नहीं पड़ना चाहते और वो स्क्रीनशॉट के बेस पर पेमेंट कर देते हैं। एक केस में कपल ने एक ज्वेलर को फेक स्क्रीनशॉट दिखा के कुछ ज्वेलरी ले ली और उस ज्वेलर को काफी देर बाद पता चला कि उसके अकाउंट में तो पैसे ट्रांसफर ही नहीं हुए। मैं इस वेब लिंक के साथ ही खेल रहा था और देख रहा था कि मैं कितनी ऑथेंटिक फेक चैट जनरेट कर पा रहा हूं और सोच रहा था कि इससे तो किसी को भी फंसाया जा सकता है और किसी के भी जीवन में क्योस क्रिएट किया जा सकता है। फिर मैंने सोचा कि क्या इसका कोई पॉजिटिव यूज भी हो सकता है और फिर कुछ सोचकर मैंने दो फेक चैट सीक्वेंस क्रिएट किए और अपने फ्रेंड अश्विन और उसकी वाइफ श्रुति के बीच चल रही टेंशन को मिटाने का एफर्ट किया। एक फेक चैट सीक्वेंस जो कि मेरे और अश्विन के बीच की थी और जिसमें अश्विन अपनी वाइफ श्रुति को अमेजिंग लाइफ पार्टनर होने के लिए उसे थैंक्स करते हुए उसकी तारीफ कर रहा था। यह फेक चैट का स्क्रीनशॉट मैंने श्रुति को भेज दिया। इसी तरह मैंने एक और चैट सीक्वेंस जनरेट किया जो मेरी और श्रुति के बीच का था, जिसमें श्रुति अपने हस्बैंड अश्विन के प्रति थैंकफुल थी और उसके लिए अपना कंसर्न शो कर रही थी और यह स्क्रीनशॉट मैंने अश्विन को भेज दिया। मेरे भेजे गए फेक स्क्रीनशॉट ने उनके बीच आइस ब्रेक का काम किया और उनके बीच की गलतफहमी दूर हो गई। जब अगले दिन श्रुति और अश्विन दोनों ने मुझे कॉल किया और थैंक यू बोला तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि कई बार जिंदगी में रियल फीलिंग चेक करने के लिए भी फेक चैट ऐप्स का सहारा लेना पड़ सकता है। यह रियल लाइफ साइबर क्राइम केस सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फेक यूपीआई और व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स इतने रियल लगते हैं कि कोई भी फंस सकता है। मगर आप ऐसे केस में कैसे सेफ रह सकते हैं मैं आपको बताता हूं। ध्यान रखिए, इस तरह की कई सारी वेब एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो आपको किसी भी एप्लीकेशन का फेक स्क्रीन जनरेट करके दे देती हैं, जैसे व्हाट्सएप और स्नैपचैट की फेक चैट जनरेट करना, यूपीआई पेमेंट का फेक स्क्रीन जनरेट करना या किसी ओटीपी मैसेज का फेक स्क्रीन जनरेट कर देना। लोग अक्सर इन ऐप के थ्रू फेक स्क्रीनशॉट जनरेट कर आपको धोखा दे सकते हैं। कभी भी किसी के थ्रू शेयर किए गए स्क्रीनशॉट पर ब्लाइंडली भरोसा ना करें। वेरीफाई करें कि आपके अकाउंट में वाकई पैसे रिसीव हुए हैं। आपका कोई दुश्मन फेक चैट की स्क्रीनशॉट भेजकर लोगों के बीच में गलतफहमी भी क्रिएट करवा सकता है, यहां तक कि लोगों के बीच में दुश्मनी भी हो सकती है। सुनिए दिल्ली के प्रभाकर कॉल फॉरवर्डिंग से रिलेटेड क्या जानना चाह रहे हैं।
हेलो सर, मैं हूँ प्रभाकर दिल्ली से। अमित सर, मुझे आपका हिडन फाइल शो बहुत पसंद है और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे अपने फोन में कॉल फॉरवर्ड लगानी चाहिए।
प्रभाकर, थैंक यू सो मच शो को पसंद करने के लिए। देखिए, कॉल फॉरवर्डिंग के लिए सरकार अभी एक नई गाइडलाइन लेके आई है जिसमें 15 अप्रैल के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर को निर्देश दिया गया है कि वो कॉल फॉरवर्डिंग सर्विसेज बंद कर दें, क्योंकि कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग सर्विसेज का बहुत मिसयूज हो रहा था और ऐसे कई सारे साइबर क्राइम बढ़ गए थे जिसमें ओटीपी चुराने के लिए कॉल फॉरवर्डिंग सर्विसेज का यूज हो रहा था। ऐसे में कई बार क्रिमिनल आपके फोन से सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू एक कोड डायल करवा देते थे, जैसे *62* मोबाइल नंबर वोडाफोन के लिए, *401* रिलायंस के लिए। इस तरह से हर एक ऑपरेटर के कॉल फॉरवर्डिंग के कोड होते हैं और जब आप ये कोड डायल कर देते थे तो आपके फोन से कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग किसी दूसरे नंबर पर हो जाती थी। इसका मतलब यदि आप बिजी होंगे तो आपके वो कॉल सामने वाले को चले जाएंगे, यदि आप अनरीचेबल होंगे तो आपके वो कॉल सामने वाले को चले जाएंगे। जब आप फ्लाइट में हैं, सो रहे हैं या बेसमेंट में हैं या किसी कॉल पर ऑलरेडी बिजी हैं, ऐसे में नॉर्मल कॉल आपको आते रहते हैं, आपकी कम्युनिकेशन भी होती रहती है और आपको शक ही नहीं होता कि आपके फोन में कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्रिमिनल जब चाहे आपका ओटीपी अपने हाथ में ले सकता है, क्योंकि वो ओटीपी कॉल पर मंगाएगा, आप अनरीचेबल होंगे और वो कॉल क्रिमिनल को फॉरवर्ड हो जाता है और उसको ओटीपी मिल जाता था। ऐसे में कई बार लोगों के पैसे निकल जाते थे, उनका व्हाट्सएप हैक हो जाता था, उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता था। इसलिए इन सारे क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने गाइडलाइन तय की है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कॉल फॉरवर्डिंग फीचर बंद करना होगा। तो अब चाहें या ना चाहें, आपके फोन से कॉल फॉरवर्डिंग नहीं होगी। प्रभाकर, थैंक यू सो मच हमारे शो को पसंद करने के लिए। प्रभाकर की तरह आप भी अपने साइबर सवाल का जवाब लीजिए मुझसे। मैं हूं अमित दुबे, पेशे से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और रेड एफएम पर हमारा शो है हिडन फाइल्स, जहां हर वीक हम आपको सुनाते हैं रियल लाइफ साइबर क्राइम केस, ताकि आप रहें साइबर सुरक्षित। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड में। तब तक रेड एफएम बजाते रहो।